الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. رمضان المبارک کا یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور جتنی محنت ہم نے پورے رمضان میں بھی نہیں کی، اس سے زیادہ محنت اس وقت کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا کہ اس عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے عبادت میں، جو باقی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو باقی دنوں میں بھی محنت بہت زیادہ تھی، جس کا ہم سوچ ہی نہیں سکتے. تو ان دنوں میں اندازہ کیجئے کہ ان کی محنت کتنی ہوگی. پھر یہ دیکھیں کہ ہماری یہ جو کوششیں ہیں، یا جاگنا ہے یا محنت کرنا ہے عبادت میں، اس کو کوئی اور دیکھنے والا نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. کوئی چیک کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، کوئی یہاں پہ ٹیچر نہیں ہے، کوئی ممتحن نہیں ہے کہ جیسے دنیا کے امتحانوں میں ہوتا ہے نا، کہ سب کیوں تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کیوں محنت کر رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر یہ ذہن میں بات ہوتی ہے کہ اگر میرے اچھے نمبر نہ آئے تو لوگ کیا کہیں گے، میری دوستوں کے زیادہ نمبر آ گئے تو میری بےزتی ہوگی کہ میرے کم آئے ہیں. اور مقابلہ اسی بات کا ہوتا ہے کہ باقیوں سے زیادہ ہوں، اور ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ میرے دیکھو سب سے اچھے نمبر آئے. اسی لیے ایک ایک نمبر کے لیے لوگ لڑتے ہیں. مگر اس عشرے کی محنت کو نہ کوئی دیکھ رہا ہے، نہ کسی کو پتہ چلنا ہے، نہ کسی کے آگے نمبر لگنے ہیں سوائے رب کائنات کے. صرف وہ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، کوئی بھی اور نہیں جانتا. اسی لیے اس میں وہ ہی کام کرے گا جو واقعی اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتا ہوگا کہ وہ اس کی خاطر جاگ بھی سکتا ہے، اور اس کی خاطر عبادت میں کھڑا بھی رہ سکتا ہے، اور ان راتوں میں جاگنا اس کو اپنی خوش نصیبی لگتا ہے. کیونکہ رات کے اس اندھیرے میں کون آ کے چیک کر رہا ہے، کون ہمارے دروازے پہ کھڑا ہے؟ نہ ہم کسی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی کسی جگہ پہ بھی نہیں. یا اینڈ آف رمضان میں ہمارے ساروں کے نمبر کسی ویب سائٹ پہ لگنے ہوں تو پھر ہمیں شاید فکر بھی ہوتی، لیکن ایسی بھی کوئی فکر نہیں. اب دیکھیں نا، ایسے وقت میں کوئی مخلص لوگ ہی ہوں گے جو محنت کریں گے، اور جو کر رہے ہیں یہ آپ کے اخلاص کی علامت ہے. الحمدللہ، پھر شکر ادا کیجئے کہ تنہا ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے، کسی جگہ پہ بھی نہیں ہیں. مسجد میں بھی بعض دفعہ یہ ہو جاتا ہے، کون 20 طرح بھی پڑھ رہا ہے، کون 12 پڑھ رہا ہے، کون 8 کے بعد جا رہا ہے، پھر بھی ایک لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. گھر میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، چاہے آپ سو جائیں، چاہے آپ بیٹھے رہیں، آپ کچھ کریں یا کچھ نہ کریں، جاگ کے بھی ادھر ادھر انٹرنیٹ پہ براؤزنگ کرتے رہیں، کسی کو نہیں پتا. یہ صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کتنا ہم کر سکتے تھے مگر نہیں کیا، اور کتنے کی ہم میں طاقت تھی اور ہم نے اس سے بھی بڑھ کے کیا. یہ سب اس کو پتا ہے. مثلاً ایک بندی 2 سپارے روزانہ آرام سے پڑھ سکتی ہے، مگر ایک ہی پڑھ کے رکھ دیتی ہے کہ بس کافی ہے نا، اب اتنا کیا کرنے کی ضرورت ہے. ایک بندی ایکسٹرا نفل ادا کر سکتی ہے، مگر یہ نفل ہی ہے نا، کون سا ضروری ہے، کوئی فرض تو ہے نہیں، تو بس اتنا ہی کافی ہے. ایک بندی افطار میں ایک ڈش کم بنا کے اس وقت کو دعاؤں میں گزار سکتی ہے، مگر اس نے سوچا آج بچے خوش ہو جائیں گے، چلو اور بھی کچھ بنا لیتی ہوں. वो 2 घंटे से किचन में खड़ी हुई है बच्चों की खुशी के लिए। तो ये पेपर भी हमारे ही सामने है और नंबर भी हमारे ही सामने लगने हैं। कितना कर सकते थे और कितना किया। कोई अपने आप को मसरूफ ज्यादा दिखा सकता है मगर करता कुछ भी नहीं है, और कई बहुत कुछ कर रहे हैं। यकीन जानिए इसी दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो इतने आगे निकल चुके हैं, और चूंकि वो अपना कुछ भी जाहिर नहीं करते इसलिए पता नहीं चलता। कयामत के दिन जब आमाला में खुलेंगे तो तब वो जब खुशी से कहेंगे, हा उमुक राओ किताबिया, लोगो आओ आओ देखो ये पढ़ो मेरी किताब, देखो मुझे यकीन था मेरा हिसाब होना है, मैंने इसकी तैयारी की थी। तब उनके भेद खुलेंगे। अभी तो हमें लगता है ना कि हम ही को बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इतनी भी करने की जरूरत नहीं। देखो फलां तो इतना भी नहीं करता, फलां इतना भी नहीं करता, फलां सो भी जाते हैं, मैं ही पता नहीं क्यों उठी हुई हूं। हमें अपना आप ही बहुत बड़ा लगता है कि हमने ही कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन नहीं, बहुत सारे छुपे हुए लोग हैं। जिस दिन उनकी नेकी खुलेगी ना तब पता चलेगा कि देखो ये भी हमारे जमाने में होते थे, इन्होंने कितना कुछ कर लिया और आगे बढ़ गए, और हम इसी खुशफहमी में बैठे रहे कि हम तो कर ही बहुत कुछ रहे हैं, करते कुछ नहीं, बस अपने आप को मसरूफ बहुत दिखाते हैं। तो इन दिनों को कीमती जाने, सिर्फ मसरूफ दिखाने से नेकी नहीं बढ़ जानी, जब तक वाकई नेकी करें ना। देखें इन दिनों में हर चीज को पीछे करते हैं। यकीन जाने कि मेरे कई काम ऐसे हैं कि मैं उनकी तरफ देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ ये भी करना, ये भी कर, फिर मैं उनको पीछे डाल देती। कोई बात नहीं, अभी थोड़े दिन ही तो रहते हैं, उसके बाद कर लूंगी। कोई कयामत नहीं आ रही, कोई आसमान नहीं टूट रहा, ये वक्त मगर दोबारा नहीं आएगा। हर काम बाद में हो सकता है, तो अपना पूरा जोर हमने लगाना है कि ये हमारा वक्त नेकी में गुजर जाए, इबादत में गुजर जाए। घर के काम हम सारा साल करते रहते हैं, अगर कुछ पड़ा रह भी गया, कहीं कुछ चीजें ऑर्डर में नहीं है, तरतीब से नहीं पड़ी भी, कोई मसला नहीं है। ये काम डिले किए जा सकते हैं, नेकी डिले नहीं की जा सकती। इसलिए क्योंकि ये रमजान गुजर गया ना, तो आप यही कुरान पढ़ेंगे मगर उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना आज मिल रहा है। आप यही नवाफिल पढ़ेंगे मगर कहाँ उतना अजर है। आप यही तस्बीह करेंगे मगर बहुत कम है इसके मुकाबले में अजर जितना आज है। आज बहुत कम एफर्ट लगा के, जैसे सेल लगी होती है ना, आप थोड़े पैसे देते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी चीजें आ जाती हैं, क्योंकि वो चीज ही 90% ऑफ पे लगी हुई है। अब वो ही चीज पहले 100 में खरीदते थे, आज वो 1 रुपए में आपको मिल रही है। आज 100 चीजें ले सकते हैं आप, जब सेल खत्म हो जाती तो आप 100 रुपया भी देते हैं तो 1 आती है। यही समझ लें रमजान का हाल है कि आज आप थोड़ा भी करेंगे ना बहुत कुछ जमा हो जाना है, और रमजान गुजरने के बाद बहुत भी करेंगे तो उतना उतनी नेकी नहीं मिलनी। तो फिर इन दिनों और रातों में सिर्फ अर्जेंट काम करें। देखिए बाज काम अर्जेंट होते हैं जिनको किए बगैर चारा नहीं, वो इस वक्त ही करनी, जैसे सहरी अफ्तारी बनाना, लेकिन उसमें भी इतदाल होना चाहिए। बच्चों को स्कूल छोड़ना है, नहाना धोना वगैरह, ये सब चीजें अर्जेंट है, ये अभी करनी है ना। दूसरे कई काम हैं जो इम्पोर्टेंट तो बेशक हैं मगर अर्जेंट नहीं है। मसलन आपने लॉन्ड्री रखनी है, लॉन्ड्री होके पड़ी हुई है, बास्केट में पड़ी हुई है, कोई बात नहीं उसमें से निकालनी। कपड़े जरूरी नहीं है अभी से आपने इस्त्री कर करके सारी अलमारी सेट करनी। मसाले जरूरी नहीं है अभी आपने ग्राइंड करने, फ्रिज को अभी साफ करना, ये जरूरी है काम बेशक मगर अर्जेंट नहीं है। तो लिहाजा वाइजली इस वक्त को इस्तेमाल करें, बड़ी समझदारी के साथ चेक करें कौन से काम अर्जेंट हैं और कौन से सिर्फ इम्पोर्टेंट हैं, अर्जेंट नहीं है, और जो ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है उनको तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो जरूरी है कि हमारे इन दिनों और रातों का कोई हिस्सा भी वेस्ट ना जाए। अगर दिन है तो या तो इबादत में लगे, या फिर रात को जागने के लिए आपको जो मदद चाहिए वो कैलुला से चाहिए, सोने से चाहिए, नींद पूरी करनी है वो कर लें ताकि रात को अलर्ट हो सके। तो वो आपका सोना भी इबादत है, वो उसकी नीयत ही ये है ना, ताकि मैं रात को अलर्ट होके अल्लाह ताला तेरी अच्छी इबादत कर सकूं। इस मदद चाहने के लिए आप सोते हैं, वो सोना भी ठीक है, मगर टाइम को जाया ना करें कि कहीं बैठे हुए तो बैठे हुए अब गपशप कर रहे हैं घर वालों के साथ, तो गपशप हो रही है, 2 घंटे उसके अंदर गुजर गए, उधर बैठ गए उधर बैठ गए, थोड़ा सा टीवी चला के देख लूं पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, न्यूज क्या है। नहीं, ये सब काम बाद में हो सकते हैं। हर वक्त में अपने से सवाल करें, इन दिनों और रातों में मैं इस वक्त ये कर रही हूं कहीं मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, फौरन जिक्र शुरू कर लें। मैं चूल्हे के आगे भी अगर खड़ी हुई हूं, मेरी जुबान खामोश क्यों है, फौरन इस्तगफार शुरू कर दें। मैं अपने घर वालों से इस वक्त गपशप में क्यों लगी हूं, ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। मैं इस वक्त अपना कुरान पढ़ लेती, अगर मैं इस वक्त आसानी के साथ आजकल एक पारा पढ़ सक रही हूं, तो यकीन जाने थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट करके मैं इसको बढ़ा सकती हूँ, 1.5 पढ़ सकती हूँ, 2 पढ़ सकती हूँ। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जैसे रमजान के पहले 20 दिनों में हम चल रहे थे, हम उतनी ही स्पीड के साथ इन दिनों में चल रहे हैं। इसका मतलब आपने कोशिश बढ़ाई नहीं है, ये बढ़नी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर पहले भी एक ही पारा पढ़ रहे थे, अब भी एक पारा पढ़ रहे, तो फर्क क्या रहा? क्योंकि अब ये मुबारक वक्त खत्म होने जा रहा है, और जब कोई मेहमान रुखसत होने वाला हो, तो चाहे इतने दिन से हमने उसको टाइम ना भी दिया हो, आपने देखा ना जब जाने लगता है कोई, तो जो आखिरी के दिन होते हैं सब उसके गिर जमा हो जाते हैं, या अब इसने चले जाना है। तो ये रमजान भी जा रहा है, चंद दिनों का मेहमान है ये, इतने दिनों में तो उसको टाइम दे देना। इन दिनों को भी ईद की शॉपिंग और ईद की तैयारियां करने में ना गुजार दें, इबादत में तेजी दिखाएं। रेस एंड होने वाली है, वो किसी ने कहा ना कि ये ना हो कि घोड़ा भी तुमसे ज्यादा अकलमंद हो जाए, क्योंकि घोड़े को भी पता होता है कि जब रेस एंड होने वाली होती तो वो तेज दौड़ता है, ये ना हो कि वो भी तुमसे ज्यादा अकलमंद साबित हो, तुम्हें पता है कि रेस एंड होने वाली है फिर भी तुम्हारी स्पीड वही है। आपने देखा दौड़ने वाले जिस वक्त वो फिनिश लाइन को देखते हैं कितनी तेज दौड़ते हैं, अच्छा पीछे से वो बेशक जरा एक दरमियानी स्पीड में भी आ रहे होंगे, लेकिन जब एंड करीब आता है तो तब तो पूरी जान ही लगा देते हैं। देखा होगा आपने कभी ये, तो क्या हमारी पूरी जान लग रही है इन दिनों में? इमेजिन करें वो वक्त के जब मेरा मीजान कायम होगा और उसमें मेरी नेकियां भी डाल दी जाएंगी, और दूसरी तरफ मेरे गुनाह तोलने के लिए डाले जा रहे होंगे, और मेरी नेकियों में एक भी अगर लैलतुल कदर आ गई तो सोचे मेरी नेकी का पलड़ा कितना वजनी हो जाएगा, और एक से ज्यादा आ गई तो कितना अच्छा होगा, कितनी खुशी की बात होगी। क्या फिर ये जागना कोई मुश्किल है? वहां को सोचें कि ये कितना वजनी कर देगा मेरी नेकी के पलड़े को, जहां लोग एक एक नेकी के लिए परेशान होंगे, वो चाह रहे होंगे कि कहीं से उनको एक नेकी भी मिल जाए, और उनका नेकियों का पलड़ा भारी हो जाए, जहां एक एक नेकी बिलियन ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा, और सोने चांदी के ढेर से भी ज्यादा, और बैंक बैलेंस से भी ज्यादा, और कीमती जायदादों से भी ज्यादा वजनी होगी, कीमती होगी, और एक नेकी भी सारी दुनिया की दौलत देके खरीदी नहीं जा सकेगी, इसलिए कि वहां की करेंसी तो सिर्फ आमाल है। पूरी दुनिया की दौलत भी आप दे देंगे तो एक नेकी मांगेंगे नहीं मिल सकेगी, वहां तो लोग ये चाह रहे होंगे कोई मुझे ऐसा नजर आ जाए कहीं जिसके खाते से मैं उसकी नेकी ले लूं, बस कोई ऐसा मिल जाए मुझे कि जरा भी उसने मेरे साथ कहीं कोई ज्यादती की हो तो अब मैं उससे बदला ले लूं, उसकी नेकी छीन लूं।
कोई ऐसा मिल जाए जिसने मेरा हक दबाया हो, मेरे मेरे हक ना दिया हो, आज मैं उसको पकड़ लूं कहीं से, मुझे मिल जाए कहीं, ताकि मैं उसकी नेकियां छीन लूं। जहां इतनी मारा मारी होगी, जहां वो ऐसा बाजार है कि जिसमें लेन देन नेकियों की सूरत में है बस, उसके अलावा वहां पे और कुछ नहीं चलता। ऐसे में कई खड़े खड़े लुट जाएंगे, कंगाल हो जाएंगे, उनके नेकियां लेकर आए होंगे और कोई और ले जाएगा, और कोई कम नेकियां लेकर आए थे मगर मजलूम थे तो इधर उधर से बहुत कुछ जमा कर लेंगे। ये आपाधापी का वक्त होगा, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होनी है, उस दिन की नफसा नफसी से पहले अपने लिए यहां इंतजाम कर ले। आज नेकी कितनी सस्ती है, कितनी आसान है। मैं तो कहती ये आसान है, ये हमें मुश्किल लगती है ना, ये हाय क्या ये रात को जागना, हाय क्या हम तो थक गए हैं और बस इतने दिन से बस भाग रहे हैं तरावी के लिए, इसके लिए थके जा रहे हैं, नींद नहीं जी पूरी हो रही हमारे, ये हो गया। ये तो बहुत सस्ती मिल रही है नेकियां, बहुत सस्ती हैं, ये तो कुछ भी कीमत नहीं है जिस पे हमें ये इतना कुछ मिल रहा है, खजाना। ये तो वहां जाके पता चलेगा, और ये तब तक है जब तक हमारी सांस चल रही, जो ही सांस बंद हुई हमें फौरन अंदाजा हो जाएगा कि ये नेकी कितनी कीमती थी, इसकी कितनी वैल्यू थी, ये आज नहीं ना पता चल रहा। इतने तो कोई बात नहीं, फिर नहीं भी किया तो हमें क्या फर्क पड़ गया, ये कौन सा फर्ज है, हम जागी तो लिए थे कल की रात भी, तो आज नहीं भी जागे तो क्या फर्क पड़ा। फिर ताक रातों में जाग लें उसके बाद क्या जरूरी तो नहीं है कि इवन में भी जागे, नहीं आज तो ले लो तो कदर हो ही नहीं सकती, आज तो हम आराम करेंगे। कोई कहता है जॉब पे बहुत बिजी चल रहा है आजकल, कोई कहता है थकन बहुत हो गई है, कोई कहता है बच्चों के स्कूल के साथ बहुत हार्ड है। ठीक है मुश्किल होगा, मगर इतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल वो दिन है जिसमें यही नेकियां सिर्फ हमें पार लगा सकेंगी, जिनमें जिस दिन में निजात सिर्फ इनकी बेस पे होगी। हम जितने भी थक चुके हैं मगर हम हिम्मत करें इसलिए कि ये मौके बार बार नहीं मिलते, ये बार बार चांस हमारे हाथ में नहीं आएगा। जू ही आखिरी रमजान का चांद गुरूब होगा, आखिरी डेट का चांद गुरूब होगा, ये रहमतों के दरवाजे जो अभी खुले हुए, जो जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं कोई भी बंद नहीं है, जहन्नुम के बंद हैं कोई भी खुला नहीं है, सब पहले की तरह हो जाएगा, शैतान भी खुल जाएंगे, सबको आजादी मिल जाएगी, बहकाएंगे भी वसवसे भी डालेंगे। तो ऐसा तो वक्त नहीं आएगा ना, तो गनीमत जाने इन रातों को, इन दिनों को, इनकी कदर करें, इनको बोझ ना समझे, इनकी थकन पे भी खुश हों, इस मेहनत पे भी मुस्कुराएं कि शुक्र है मेरे रब तूने इस जिंदगी को किसी काम का बना दिया, वरना सारा साल कौन सी बताएं ऐसी रात होती है जिसमें हम सारी रात जी बैठ के इबादत कर रहे हो, या तो कुछ रात ही इबादत कर रहे हो, कौन सी रात ऐसी होती, सारा साल नहीं होती, कौन सी रात ऐसी होती जिसको हम डेडिकेट कर देंगे, हम कहेंगे बस आज रात तो मैंने इबादत करनी, बताइए कोई एक भी रात। हम गधे की तरह दुनिया के काम कर करके थकते रहते हैं, और इन्हीं कामों के पीछे हम रातों को भी जागते हैं, मगर इबादत के लिए नहीं जागते। आज सांस चल रही है तो हम कर पा रहे हैं, कल सांस बंद हो जाएगी तो लाख भी चाहेंगे तो एक नेकी भी नहीं कर पाएंगे, और कमाई के दिनों में ताजिर की जितनी सेल ज्यादा होती है थकन के बावजूद वो खुश होता है, वो प्रॉफिट बनाने में इतना खुश होता है कि उसको अपनी थकन भी भूल जाती है। और आप देखें तो सहाबा और हमारे असलाफ, उनकी नेकियां इतनी थी, उनको तो शायद अगर लैलतुल कदर ना भी मिलती तो उनका कोई गुजारा हो सकता था, और हम तो सारे साल के फकीर हैं, हमारा तो काम ही बोनस पे चलना होता है, जैसे कोई वर्कर होता है ना उसको बोनस का इंतजार रहता है, बोनस आएगा तो मैंने फलां फलां काम करने, हमारा बोनस तो लैलतुल कदर है, ये मिल गई
तो हमारे कुछ शायद पिछले पूरे साल की जो कमी थी वो शायद किसी हद तक पूरी हो सके। इसीलिए जो लोग छुट्टी ले सकते हैं वो छुट्टी ले लिया करें इस टाइम पे, ताकि भरपूर फायदा उठा सके इन रातों से। अगर इन रातों में हमारी बख्शीश हो जाए और हमारा रब हमें देख के खुश हो जाए, तो बिलीव मी, बहुत नफे का सौदा हमने कर लिया। इससे ज्यादा नफे की चीज कोई नहीं हो सकती। अगर हमारा रब एक बार कह दे कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो इससे बढ़ के भी कोई खुशी की बात हो सकती है? ये 10 रातें तो क्या, ये सुनने के लिए तो पूरी जिंदगी का एक एक लम्हा भी लगा दे तो भी वर्थ है। फिर अब ये फरमा दे, ये ऐलान कर दे, मैं तुमसे राजी हूं, अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। और ये ऐलान होगा एक दिन, मगर उन लोगों के लिए जो जन्नत में पहुंच चुके होंगे, तब उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। हर नेमत से बढ़ के उनके लिए ये नेमत होगी कि उनका रब राजी हो गया। इसलिए कि यही सुनने के लिए तो वो दुनिया में खुद को बचा बचा के चलते रहे, नेकियों करने में थकते रहे, खुद को अल्लाह ताला की इताअत में बांध बांध के रखते रहे, गुनाहों से बचते रहे। इसी को सुनने के लिए तो वो तरसते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि कब ये बात हमारे कानों में आए कि हमारा रब राजी हो गया। तो अल्लाह ताला को राजी करने की कोशिश करें हर रात, इसी तरह समझे कि यही लैलतुल कदर है, अपनी बख्शिश मांगे, अपने अल्लाह के आगे अपनी हाजतें रखें, सदका करें हर रात, हर रात में जागें, हर रात को जिंदा करें। सोने के लिए बहुत टाइम है, और एक दफा कब्र में चले गए तो फिर तो सोना ही सोना है। तो कोई बात नहीं, अगर चंद रातें ना भी सोए तो, और दिन में इसको कोशिश करें कि अपनी नींद को थोड़ा सा पूरा करें ताकि रात को अलर्ट रह सके। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम उसकी अच्छी इबादत कर सकें, अल्लाह ताला हमारी मदद करे इसमें, और हम इतनी लज्जत महसूस करें इबादत करने में कि हमारा कभी जी ना भरे। देखिए, जिनको इबादत करने में मज़ा आने शुरू हो जाता है ना, उनका जी नहीं भरता फिर, उनको बोझ नहीं लगता फिर। जैसे लोगों को दूसरी चीज़ों में मज़ा आता है ना, किसी को मूवी देख के मज़ा आता है, किसी को कुछ और खेल तमाशों में मज़ा आता है, कोई अल्लाह के प्यारे ऐसे भी होते हैं उनको इबादत में मज़ा आता है, उनकी लज्जत इबादत है। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज थी, उनको उसमें मज़ा आता था। तो अल्लाह ताला हमारे लिए ऐसा बना दे कि इबादत में हमें लज्जत आने लगे, उसमें हमारा दिल लगने लगे, और अल्लाह ताला हमसे कबूल भी कर ले, और हमें हिम्मत भी दे कि हम अच्छी इबादत कर सकें। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो अब हिम्मत के साथ बैठना है, इसके बाद भी इंशाल्लाह आपने अपनी वक्त को सही से इस्तेमाल करना है, रात की घड़ियों को, ताकि रमज़ान ख़त्म हो तो हम ये कह सकें कि मैंने लैलतुल कदर पा ली, चाहे वो कोई भी रात थी, चाहे वो कोई भी रात थी, कोई 23वीं थी, 24वीं थी, 25वीं थी, जो भी थी मैंने पा ली। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल करे जो लैलतुल कदर की इबादतें कर पाते हैं।